Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ye Dashashloki Acharya Shankar ke dwara jo virachit hai, Acharya Vasudhan Saraswati ji सिद्धांत बिंदु के अनुसार जो उनकी टीका है, इस दशश्लोकी के ऊपर बड़ा गहन विचार किया। अभी तो आप लोग पहले श्लोक के अवतरण ही सुन रहे हो, और मुझे लगता है जब ये पहला श्लोक आएगा और इसकी जब व्याख्या चलेगी, तो पहले श्लोक को सुनने के बाद 9 श्लोक अपने आप समझ में आ जाएंगे। इतनी बड़ी व्याख्या उसकी, आगे जाके व्याख्या कम होती गई, पहले श्लोक में बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या। रोज हम लोग सत्संग करते हैं, दशश्लोकी में अभी पाठ किया, न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा। तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश जो देने वाला है उसका नाम है शास्ता। शास्ता का अर्थ है सामान्यतया शासन करने वाला, लेकिन यहां पर शास्ता का अर्थ किया उपदेशकर्ता। तत्त्वमसि महावाक्य के अनुसार दे रहे उपदेश, ऐसे जो गुरु उपदेशकर्ता गुरु ही शास्ता से कहलाते हैं। न शास्ता, उपदेश करता भी कोई नहीं, न शास्त्रम, शास्त्र का मतलब है उपदेश करणम, शास्त्रा का मतलब हो गया उपदेश करता गुरु, और शास्त्र का मतलब हो गया उपदेश करणम, जो करण है जिसके माध्यम से हमें उपदेश देते हैं साधन। न शास्ता न शास्त्रम, और जिसको उपदेश देना है वो कौन है? शिष्य। शिष्य का मतलब होता है जो शासन के द्वारा अनुशासित हो। जिस शिष्य को उपदेश देना है ऐसा उपदेश रूपी कर्म ये भी नहीं है। उपदेश कर्ता, उपदेश करण और उपदेश कर्म, सबका निषेध हो रहा है। न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा। शिक्षा का मतलब उपदेश क्रिया। उपदेश कर्ता, उपदेश कर्म, उपदेश करण और उपदेश क्रिया, सबका निषेध किया। न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा। न च त्वम श्रोता, त्वम का मतलब यहां पर है श्रोता और अहम वक्ता। न च त्वम न चाहम, न च त्वम न च अहम, न तुम श्रोता हो और ना ही मैं वक्ता हूं। क्यों? अयम, अयम का अर्थ किया सर्व प्रमाण सन्निधापितः प्रपंचो देहेन्द्रियादि अर्थः परमार्थतो नास्ति इति अर्थः। पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि से मानते न च त्वम न चाहम न चा अयम प्रपंचः। प्रपंच का निषेध कर रहे है। आश्चर्य की बात है, जिस रस्सी को न जानने से परेशानी है उसी रस्सी को जानने से परेशानी दूर भी हो जाती है। रस्सी वही है, केवल जानना और न जानना इतने में अंतर है। जिस जगत को हम लोग देख रहे हैं, इस जगत को देखने वाला हो गया मैं, देखते हो तो नाम पड़ जाता है दृष्टा, और जो दिखाई दे रहा उसका नाम है दृश्य। अब उपदेश किसको दिया जाए? उपदेश जिसको दिया जा रहा है और जो उपदेश देने वाला है दोनों है कौन? तत्त्वमसी महावाक्य का प्रसंग चल रहा है, एकमेवाद्वितीयम्, अद्वितीय की बात आती है तो अद्वितीय का क्या निषेध किया वहां पर? न जागरण न मे स्वप्न को वा सुसुप्तिर न विश्व न वाते जस प्राज्ञ को वा अविद्यात्मकत्वात्, और कथम सर्व वेदांत सिद्धम ब्रवीमि। अद्वितीय जहां पर दो न हो, रस्सी में जब सांप देखा जा रहा है उस समय में भी दो चीज नहीं है, रस्सी ही सांप के रूप में सांप दिख रहा है पुलिंग में होगा, लेकिन जब आप ऐसा बोलोगे तो क्या कहेंगे? रस्सी ही सांप के रूप में दिख रही थी, ये रस्सी कभी कभार सांप के रूप में दिखेगी। अच्छा, रस्सी जिसने बनाई होगी उसको कभी उसमें सांप दिखेगा कि नहीं? क्यों, उसको भी तो मंद अंधकार में दिख सकता है ना, अपने ही हाथ की बनाई हुई रस्सी से डर सकता है कि नहीं? जानकारी तो रस्सी बनाते समय थी, जब रस्सी सड़क पे पड़ी मिली उसको, हमको तो लगता है वो ये भी नहीं पहचान पाएगा कि मेरी ही बनाई हुई रस्सी है, और तो बात छोड़ो, अपनी बनाई हुई रस्सी को न तो पहचानेगा और उससे भयभीत भी होगा। हम लोगों का भी यही हाल है, बना तो लेते हैं और फिर आपको अपनों ही से ही क्या होता है, डर लगता है कि नहीं? यहां पर तो आप लोग निडर हो, अंदर आके प्रेमपुरी में जैसे आए डर गया, और घर में द्वितीयाद वही भयम भवती, घर में भय होता है, ये सब अज्ञान के कारण है, जिसका स्वरूप कल आपने सुना था, थोड़ा रह गया था वो प्रसंग, उसको भी पूरा करते हैं। उससे पहले ये देखना है कि ब्रह्म भाव और अब्रह्म भाव दो बातें की जाती है। ब्रह्म भाव वाले को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, वो तो ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म भाव मतलब ब्रह्म स्वरूप, उसके लिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। और अब्रह्म भाव यदि मानेंगे जड़त्वाद असत्त्वाद, जड़ और असत होने के कारण उसके लिए उपदेश देना ही व्यर्थ है। उपदेश किसको दिया जाए? जो चेतन वाला हो, जो बात समझे। अब्रह्म भाव का मतलब जड़ भाव, और ब्रह्म भाव का मतलब चेतन भाव, अपने स्वरूप में जो स्थित हो चुका है उसके लिए भी उपदेश की आवश्यकता नहीं, और जो जड़ है वह तो बोलना ही बेकार है। उपदेश अनर्थक्यात् ब्रह्म भावस्य स्वतः एव सिद्धत्वात्, उपदेश की अनर्थकता निरर्थकता इसलिए है कि यह ब्रह्म भाव स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध भावाद अनन्याश्रयत्वात्, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमें उपदेश दिया जाएगा तब हम समझ पाएंगे कि मैं कौन हूं, और जब आप बोलते हो ना कि मैंने अपने को जान लिया, मोहस्य निवृत्ते आत्मा ज्ञातत्वेनोपलक्षित, ऐसा शास्त्रों में एक पंक्ति आई है, श्लोक है शायद, कि जो लोग बोलते हैं कि मोह के कारण जो मैं अपने को नहीं जान रहा था, अब उपलक्षण पूर्वक मैंने अपने को जान लिया, जो अज्ञात था वो ज्ञात हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है, न तो अज्ञात है न ज्ञात है, न जाना गया न बताया गया, लेकिन सारा खेल भी होता है, इसलिए जो इसके बारे में बोलता है ना वो भी एक आश्चर्य है, और जो बोलता है कि मैंने समझ लिया वो भी आश्चर्य है। जीवस्य स्वतो ब्रह्म भावे अपि, जीवों के अंदर स्वाभाविक रूप से ब्रह्म भाव रहने पर भी, हम लोगों के अंदर जो ब्रह्म भाव है स्वाभाविक है कि बनावटी है? स्वाभाविक है। बल्कि मैं अपने को मनुष्य कह रहा हूं, जीव कह रहा हूं, ये सब बनावटी है। बोलते समय हम लोग उल्टा बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश का गुण, शब्द का आकाश की आकाश का शब्द, क्या बोलेंगे? एक बहुत सुंदर षटपदीय स्तोत्र भी है ना, अभिनय मपनय सामुद्रो तरंग, समुद्र की तरंग की तरंग के समुद्र, क्या बोलेंगे वहां? समुद्र की तरंग, सीधी सी बात है। आकाश का शब्द या शब्द का आकाश, ये हम लोग कई बार गड़बड़ करते हैं बोलते समय। ब्रह्म में हम है कि हम में ब्रह्म है? आज आप लोग समाधि में नहीं जाओगे तो पक्का हो गया, इसलिए पूछना पड़ता है बीच बीच में। तो बोल रहे हैं कि जो जीव है उसके अंदर जो ब्रह्म भाव है वो स्वाभाविक है, और जो जीव भाव है या जीव भाव बनते ही फिर मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, फिर आप आगे आगे जोड़ते चले जाते हो, ये सब मोह के कारण होता है। तो ये जो है जीवस्य स्वतो ब्रह्म भावे अपि अविद्या व्यवधानम, जो जीव ब्रह्म भाव वाला है स्वाभाविक रूप से, उस स्वाभाविकता को क्यों नहीं पहचान पाता? तो हेतु दे दिया कि अविद्या व्यवधानेन, बीच में जो भेद है। अब आप लोग इतने तक समझ लो, ये भूमिका बन गई। अब आप लोग क्या बनना चाहते हो? ब्रह्मज्ञानी? नहीं बनोगे ब्रह्मज्ञानी, है ही, फिर क्यों आए? चलो पहले अज्ञान को हटाओ। कल बता दिया जो ये भांजे, मामा और भांजा, आप बोल रहे थे मामा को बदनाम किया, हमने कहा मामा मतलब डबल मां, मां के भाई, तो मां तो एक ही हुई मां, और मामा कितने हो गए? दो, डबल मां। मामा बहुत प्रेम करते हैं भांजे से, ऐसी बात नहीं है। अब जिनकी नहीं बनती हो अलग बात है। आप लोगों को मालूम है ना, भागवत की कथा सुनते हो, कंस को मारा भगवान कृष्ण ने, दुनिया जानती है। लेकिन कंस के मरने के बाद सबसे ज्यादा रोया भी कौन? कृष्ण बड़े विलाप कर रहे थे, मामा जी आप कितने अच्छे थे, क्या करूं। तो उनके जो मामिया थी, क्या नाम था, अस्थि और प्राप्ति, जरासंध की बेटी, घूंघट के अंदर से वो तो बड़े जोर जोर से रो रही थी, हाय अब मेरा क्या होगा। भगवान कृष्ण भी जाकर के बोलते हैं, मामा जी आप कितने अच्छे थे, कैसे चले गए। तो उन मामियों को अंदर अंदर हंसी आ गई कि देखो पहले तो मारा और आके यहां विलाप कर रहा है, भगवान ने हल्ला कर दिया, देखो मामा जी के जाने के बाद मुझे कितना दुख हो रहा है, लेकिन इन मामियों को कोई दुख नहीं हो रहा। बोले ये देखो इधर भी फंसा दिया, उनके सामने पंगा नहीं ले सकते। तो भगवान ने बहुत विलाप किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करे क्या। तो सात मामा के भांजे भी भूखे ही रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और अभिमान, ये सात मामा एकदम गिन के रखना, कभी भूलना मत, न छह रखना न आठ, सात है। सात मामा के भांजे भी भूखे, पिताजी के लिए हो गया ससुराल सुख का सार, घर रहे दिन दो चार, घर रहे माह पखवार तो हाथ में खुरपी सिर पर भार। अब ये जो भांजे हैं मामा के घर में जब डट के रहने लगते हैं तो ससुराल में जैसे दामाद भी रहे तो क्या होगा, खाओगे खासरा बोल दिया। दो चार दिन तो बड़ा स्वागत हुआ, फिर खेत में काम था तो ये जो मामा जो लगते हो पिताजी के तो साले लगेंगे ना, तो बोले जीजाजी चलो खेत में काम करने के लिए, इसलिए वो तो खिसक जाते हैं, काम हुआ निकल जाते हैं। लेकिन ये भांजे ननकाना ननिहाल को जो अपना घर मान के बैठता है इसकी तो दुर्दशा हो जाती है। काम होवे तो परेशान, काम रूपी मामा ने काम करा लिया तो परेशान, काम हो गया तो लोभ रूपी मामा भी हावी हो गया, और नहीं हुआ तो क्रोध रूपी मामा भी हावी हो गए। वैसे ही मोह मद और मात्सर्य, मोह का स्वरूप क्या है, गणना लघु चेतसाम, जो ऐसी गिनती करते हैं कि ये मेरा है और ये पराया है। आप ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते हो, सभी के अंदर मैं हूं और सब मेरे अंदर हैं। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजिगुप्सते। ईशावास्य उपनिषद में ये दो मंत्र एक साथ साथ है। एक में है यस्तु सर्वाणि, दूसरे में है यस्मिन सर्वाणि। यह जो सर्वाणि भूतानि संपूर्ण भूतों को आत्मनि एव अपने में ही अनुपश्यतः, आत्मन्येवा अनुपश्यति अपने अंदर ही देखता है सबको, और सर्वभूतेषु च आत्मानं संपूर्ण भूतों में अपने को देखता है, अपने में सभी भूतों को देखता है और सभी भूतों में अपने को देखता है। तो उसका परिणाम क्या होगा, ततो न बिजुगुप्सते, फिर वह बिजुगुप्सा नहीं करता। बिजुगुप्सा का मतलब घृणा, फिर घृणा नहीं होती। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत बीजानतः, जब यत्रत्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्चित तत्केन कम जिग्रेत, किसको देखने की कोशिश करें, किसको सूंघने की कोशिश करें, किसको चखने की कोशिश करें, सबका निषेध किया, बृहदारण्यक श्रुति है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, ये ज्ञान होने के बाद जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, अभी हम लोगों की प्रवृत्ति रहती है, जब आप अपने को भोक्ता के भाव से देखते हो तो पंचदशी में जहां पर कृतकृत्यता और प्राप्त प्राप्यता की बात आती है तो ये दो चीजें हमेशा याद रखने की चीज होती है। तत्त्वमसि महावाक्य सुनने के बाद जब स्मरण हो गया तो स्मरण का स्वरूप क्या है, याद तो आ गया लेकिन उसके बाद जो बाकी जीवन जीना है, जो प्रारब्ध शेष है, उस समय हमारी स्थिति कैसी हो, तो कृतकृत्यता और प्राप्त प्राप्यता के भाव से ओतप्रोत जो रहते हैं, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ। कृतकृत्यता का मतलब होता है कर्तृत्व भाव से रहित हो जाना, और प्राप्त प्राप्यता का मतलब होता है भोक्तृत्व भाव से रहित हो जाना। समझ में आ रहा है, जब जब आप कर्ता बनोगे तब तब आपको भोक्ता भी बनना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम है। कर्ता के भाव आते ही आप उस कर्म के फल के भोक्ता भी बन जाते हो, इसलिए भोक्ता न बनना पड़े उससे पहले कर्तृत्व भाव का त्याग चाहिए। कर्तृत्व भाव का अभाव ही है कृतकृत्यता का स्वरूप। कृतकृत्यता का मतलब क्या होता है? कृतम, कर लिया, पास्ट टेंस, भूतकाल। कृतम क्या कर लिया? कृत्यम, कृत्यम कर्तव्यम, जो मेरे लिए कर्तव्य कर्म थे वो हमने सब कुछ कर लिया। इस भाव को धारण जो करे उनको कहते हैं कृतकृत्य। हम लोगों की कृतकृत्यता कैसी है? महाराज अब हमने अपना काम सब बच्चों को सौंप दिया। अच्छा, कैसे सौंपा? टोकरी में लेकर के दिया या बोरी में भर के दिया? अब क्या करते हो आप? बोले बस सत्संग करते, एक घंटा करता था सत्संग, फिर घर में जाके टाइम पास नहीं होता था। तो लोगों ने कहा कि भाई तुमने भले ही सौंप दिया, थोड़े जाके बैठ जाया करो। कहां पर? जहां पहले से बैठने का अभ्यास था वहां पर बैठ करके अब आपका मन लगने लगा, और उसको छोड़ करके आपका मन लग नहीं रहा था। यही परेशानी थी ना? इसका मतलब है आपने अपने मन को उसमें इतना लगा रखा है, बीमार पड़ जाओगे, नहीं चल पाओगे, फिर भी जाके बैठोगे क्या वहां? और जिसको आपने सौंपा है उसके सिर पे बैठे रहोगे तो वह अपने को स्वतंत्र महसूस करेगा कि परतंत्र महसूस करेगा? वो तो वही वाली बात हो गई, बहू आ गई रसोई घर में, जाके बीच बीच में देखते रहना क्या बना रही, कैसे बना रही है। वो कह रही माँ जी आप बैठो सोफा पे, आपको वहीं सब कुछ मिल जाएगा। बोले पूरे जीवन भर रसोई घर में जीवन कटा, अब तुम आकर के बोलती हो बैठ जा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। कौन कहता है कि चौकीदार काम नहीं करता? सबसे ज्यादा उसी का काम रहता है। वो बैठा हुआ दिखता है तो लोग समझते हैं बैठा है, जरा से उसकी पलक इधर उधर हो जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो लोगों को लगता है जो बैठे रहते वो कुछ नहीं करते। अब आपको तो कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, ये देखना है। कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो। तो कैसे देखेंगे? इसी तरह से देखना होता है। कर्तृत्व भाव पूर्वक जो नहीं भी करता अपने को मानता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, इस निषेध का कर्ता आपने अपने को माना कि नहीं माना? मैं नहीं करता हूं इस निषेध के कर्ता आप बन गए, इसलिए आप नहीं करते ये भी कर रहे हो। और जिसकी प्रवृत्ति है कर तो रहा है लेकिन अपने को क्या नहीं मान रहा है? कर्ता नहीं मान रहा है, इसलिए वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा है। कर्तृत्व भाव को धारण करते आप यदि निषेध का भी कर्ता बनते हो तो कर्तृत्व भाव है। इसमें अब ज्यादा गहराई में हम अभी नहीं जाते, इसको रख देते कल के लिए, पेंडिंग में छोड़ दो, कल जब भी मौका मिलेगा। अब आप इधर आ जाओ। कृतम कृत्यम, जो करना था वो मैंने कर लिया। क्या कर लिया? बोले बेटे को काम सौंप दिया। अब क्या इच्छा है? कुछ इच्छा है? बोले बस इसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो फिर हरिद्वार जाके ही भजन करना है। शादी भी हो गई, थोड़े दिन के बाद क्या बोलते हो, मूल तो दिख रहा, ब्याज भी दिख जाए, थोड़ा पोता आ जाए। पोता भी आ गया, देखो कृतकृत्यता की बात चल रही है। आपने जब बेटे को काम सौंपा तभी क्या बोला था कि आजकल हमने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन कहां अभी आप अटके हुए हो? ये पकड़ना आसान है और छोड़ना, पकड़ने से पहले या पकड़ते समय याद रखना कि जिस चीज को हम पकड़ने जा रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा या तो छोड़ना पड़ेगा या छुड़वाया जाएगा। हम लोग कैसे हैं, छोड़ते हैं या छुड़वाए जाते हैं?